கிருஷ்ணம் வந்தே ஜெகதுமம் ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. உபஸ்தித் பிரிய ஆத்மன், ஆஜ் இந்த வசன் நே விசார் தியா, உன்கே விசார் பர் விசார் கர்னா, அபிமான் ஔர் ஸ்வாபிமான். अभिमान जो वस्तु अपनी नहीं है उसका मालिक बनना, और जो अपनी है उसका मालिक बन करके गौरव अनुभव करना. जो चीज अपनी नहीं है उसे अपना बनाना अभिमान है, और यही अभिमान हमारे जीवन का सत्यानाश करता है. स्व नाम है जो चीज अपनी, स्व का अभिमान करना. तो पहले हमारे ऋषि मुनियों ने वेद के माध्यम से कहा, और अक्सर आप गीत में, संगीत में, पद में, दोहे में या पिक्चर्स में एक सुनते हो, पहले तो एक अच्छा इंसान बन जा. हम सब इंसान के औलाद हैं, एक अच्छे इंसान बन. वैज्ञानिकों ने यही कहा कि रियलाइज योर ड्यूनिटी, तुम अपने स्व को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो. और ये हमारी बात बहुत पहले से आ रही है, चाहे रामायण की बात करें या महाभारत की बात करें. थोड़ी व्यवहारिक बात करूंगा. व्यवहारिक बात करते समय आप मेरे परिवार के हैं, शायद थोड़ा सा सत्य कड़वा होता है, लेकिन सत्य व्यक्त मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा. और सत्य न किसी के रिश्तेदार है न किसी का पक्ष करता है, वो चाहे प्रधानमंत्री हो कि राष्ट्रपति हो, महामंडलेश्वर हो कि शंकराचार्य हो, कि आम आदमी हो कि पट्टा वाला हो, कि कोई भी हो, किसान हो. सत्य सत्य है, उसका किसी से कोई रिश्ता नहीं. तो रामायण और महाभारत के आधार पर अभिमान और स्वाभिमान जो इंद्रवदन ने पूछा है उसकी बात करूंगा. प्रथम तो यह है कि राम से जब पूछा गया, और बड़ी ही ऊंची बात है, युद्ध में आपने अयोध्या की मदद क्यों नहीं ली, भारत से क्यों नहीं मदद मांगी. एक प्रश्न उठा, और अक्सर हमारे आपके मन में भी उठ सकता है, लेकिन वहां जो राम ने कहा है वो केवल राम की बात नहीं है, व्यक्ति की बात है, मनुष्य की बात है, हमारे गौरव को ऊंचा उठाने की बात है. राम ने कहा है, अगर मैं स्वयं अपनी, बिल्कुल वैज्ञानिक बात कहें लेकिन लोग अच्छी तरह पढ़े, सब पूरी वैज्ञानिक बात है कहने का ढंग, अगर मैं अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाया और पहचानने के बाद प्रकट नहीं कर सका तो दूसरे कब तक मदद करेंगे. वैज्ञानिक किसी को ऊर्जा के नाम से कहते हैं, तो शक्ति की बात की, बिल्कुल ऊर्जा. हर व्यक्ति में कहीं भी जन्म हुआ, नर या नारी के रूप में, हमारे आपके पास जबरदस्त ऊर्जाएं हैं, एनर्जी है, लेकिन एनर्जी का जागरण हमारे अंदर है, माध्यम कोई बने। राम ने कहा अगर मैं अपनी शक्ति को जागृत नहीं कर सकता तो मदद से कुछ नहीं होने वाला। पहले इसी बात को आप पकड़िए, फिर मैं बताऊं। मैं आपसे पूछता हूं, परमात्मा की तरफ से कोई कमी आप में नहीं, जन्म कहीं भी हम भिखारी क्यों बन गए, हम लाचार क्यों बन गए, हम कमजोर क्यों बन गए? गीतांजलि में टैगोर ने भी लिखा, हे मां तेरे द्वार पर लाचार होकर कमजोर होकर दर्शन करने नहीं आया हूं। कर्तव्य का पालन करते हुए कोई हमें कमजोर न बनाए, मैं अपनी ऊर्जा का रचनात्मक उपयोग करूं, उठाने में उपयोग करूं, मेरी ऊर्जा गलत न जाए। मेरे मन में शैतानियत न आए, दूसरे का तो देख करके कैसे उसको निकालें, ऐसा उपाय करें ना कि उसको और दुखी करें। तेरे द्वार पर लाचार बनकर कमजोर होके नहीं आए, लेकिन कर्तव्य पालन करते समय हे मां जो मेरी शक्ति है वो कमजोर ना होने पाए, वो प्रार्थना करने आया हूं। विज्ञान भी यही कहता है, कमजोर की मदद दुनिया में कोई नहीं करता। वेद भी कहता है, नायम आत्मा बलहीने लभ्या, जो कमजोर है कोई मदद करना चाहेगा तो भी नहीं कर सकता। हमारी आपकी आंख कमजोर है, मुंडिया बिंद है, तो सूरज क्या करे? लेकिन हमारी आपकी आंख स्वस्थ है तो दीपक भी रास्ता दिखाएगा। इसलिए सबसे पहले हम सब परमात्मा के संतान, हम लाचार क्यों बने, कमजोर क्यों बने? बड़े प्यार से आता है नीति में, अपने माता पिता गुरु से दिल की बात कर सकते हो और मांग भी सकते हो, लेकिन माता पिता गुरु का भी धर्म है। आपकी जो योग्यता होगी वो आपके माता पिता गुरु देंगे, और आप तकलीफ में हैं तो रास्ता भी निकालेंगे, बाकी कोई नहीं निकाल सकता, सब सुख के साथ ही। अब नीति कहती है, मैं कई बार प्रवचन में भी कह चुका हूं, आज भी थोड़ा इशारा करूंगा, अभी तो काफी कम हो गया है, क्योंकि मैंने कहा कि माता पिता गुरु की जानकारी के बिना, मैं बच्चों से भी कहूंगा ये हमारी नीति, मैं गुरु हूं, माँ भी हूं, पिता भी हूं और गुरु हूं, लेकिन यहां जो बच्चे बैठे हैं, संदोष से बड़ा अच्छा प्रसंग आ जाया, इंद्र भजन ने बहुत ही ट्यूशन हुआ, बड़ा अच्छा दिया। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी माँ के पास कमी नहीं, पिता के पास कमी नहीं, गुरु के पास कमी नहीं, लेकिन माता पिता गुरु की इजाजत के बिना अगर मांगोगे तो पाप हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। बिना माँ से पूछे आप पड़ोस से भी कुछ लाए, बिना पिता से पूछे किसी से पैसा मांग लिया आपने, बिना गुरु से पूछे गुरु भाई करके एक दूसरे के लेन देन कर लिया, बात तो मेरे तक थी ना, लेन देन तो मेरे तक आता। हाँ मैं बता रहा, मैंने कहा मेरे से पूछ के दिया, आइए बात मेरे तक आई, देते समय नहीं आते, और मैं हाँ बोलूंगा तो ये भी बता, मेरा चेला ना दे लेकिन मैं किसी से मांग कर दे दूंगा, क्योंकि मैंने हाँ कहा। और जब मैंने हाँ ही नहीं कहा, आप लोग आते हो 3-3 साल के बाद कहते हो स्वामी जी आपकी बेटी, मेरी बेटी मतलब आपकी पत्नी, ये कैसी है? मैंने कहा जब देखने गया था मुझे साथ ले गया था, पूछता कैसी है और मुझे ले गया तो मुझसे पूछ रहे हैं कैसी है। आप तो एक बात यही बात रावण की है, न कभी माँ से पूछा न पिता से पूछा, और उसके ऊर्जा कलर चले, क्योंकि हम सोच सकते हैं लेकिन माता पिता गुरु ही आपकी अंदर की बात को समझ करके अच्छा रास्ता बता सकते। आपको मेरे सामने भी ऐसे प्रश्न उठे, ऐसे नहीं लोगों ने लेन देन किया, बाद में मेरे तक बात आई, मैंने कहा भाई मैं क्या करूँ। तो आज भी है आपसे कहता हूँ, अगर आप लोग आपस में लेन देन करना तो फिर मेरे पास मत, और मेरे अगर स्थिति हो तो बिना मेरे पूछे कुछ लेना, ये भी होगा, चाहे वो पेन हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे कार मांगना हो। अभी 4-6 दिन पहले की बात होता, किसी ने मुझसे कहा स्वामी जी मुझे एक जगह जाना है, मैंने कहा कि आपका वहाँ एक स्थित है उसकी बहुत बड़ी कोठी है, मैंने कहा होटल का किराया मैं बुकिंग करके दे दूंगा, आप होटल में रहना, किसी के यहाँ जाके बैठ रहा नहीं, मैंने कहा आप 15-15, 20-20 आदमी लेके जाते हैं, वो धर्मशाला है कि आश्रम, दूसरे आपके यहाँ तो 2 दिन मेहमान लाता है तो बस बताओ मेहमान की बात थोड़ी हंसे कि दुनिया कैसी। चलो मैं अपने ऊपर लेता हूँ, क्यों किसी की बात, हमारा मेहमान आ गए, मैंने चेले से कहा कि भाई अपनी व्यवस्था है नहीं, मैं किसी से मांगता नहीं, तो ऐसा कर शाम को दाल में थोड़ा नमक ज्यादा और केला राम के कम्प्रोमाइज कर लो, मैं तेरे ऊपर बड़े जोर से बिलूंगा, वो दाल उठा के फेंकूंगा, अरे 15 पर गिरेगा अपने आप ही चले जाए क्योंकि ऐसे फेंकू तो नहीं। तो ये तो एक कहानी है, केला तो गुरु का ना मानेगा, नमक ज्यादा डाल दिया, खाते समय मैंने नाटक किया, उठा के मेहमानों फेंका, तो कहते हैं गुरु जी ये नाटक सभी आश्रम में होता है, अभी तो 8 दिन रहना है, काय को दाल खाना अभी तो 8 दिन और दूसरी दाल बनवाइए हम जाने वाले हैं। ले ले, 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 ले एक अगर आपको नीति बताऊं, नीति ना मेहमान के घर पहले सूचना दे दीजिए तो ठीक है, बुरा मानिए, लेकिन 9 बजे के बाद जाते हैं और भोजन बना खिलाता है, प्रेम से नहीं खिलाता, इसलिए हमारे यहाँ बिना बताए जो रात्रि का भोजन है वो भूत भोजन प्रेत भोजन कहा जाए। क्यों कहा जाए? प्रेत इसलिए को दुखी होके बना रहा हो, या फिर आप क्या कहोगे, मैं तो आधा कप चाय पीऊँ, अरे लीटर पियो आधा कप, लेकिन बनाना तो है ना, आधा आधे कप से क्या मतलब, आज दुनिया क्यों ज्यादा दुखी होगी? बुरा न मानिए, मैंने खुद देखा, आप लोग अच्छे हो, हम जब आपके घर आते हैं तो आप दूध पिलाते हैं, लेकिन जब मेरे घर आता है कोई तो ठीक से पानी भी नहीं पिलाता और दुनिया भर की शिकायत करता हूँ कि ऐसा है। आप लोग मेहमान के आ जाओगे बड़ी डिमांड करोगे, लेकिन वही मेहमान जब घर आ जाता है तब क्या करते, आपकी बात नहीं, मैं एक जंगल तो दूसरे के दुख को तो देखो। तो कह स्वामी जी आपका चेला है कोठी भरे का है, मैं बुकिंग आप होटल की बुकिंग कराओ, पैसा मैं यहाँ से करना है, मैं कर लूंगा। फिर आप यात्रा पे जाते हो, एक बात करता, 1 लाख रुपया खर्च करते हो, केवल 100 रुपया बचाने के लिए आप परेशान करते हो, बुरा ना मानिए, 100 रुपया बचाने के लिए आप 200 रुपये परेशान करते हो, 1 लाख है कि नहीं? पहले बच्चे आए, कहते महाराज बच्चे बहुत परेशान करते, मैंने कहा शादी ही क्यों किया, उसी दिन से परेशान नहीं, आप शादी करते ना परेशान होते। अब एक बात करो, इसलिए हमारे यहाँ साधुओं के हंसी की बात, विदाई के समय लड़की रो रही है और लड़का हंस रहा है, महात्मा जी जा रहे हैं, महात्मा जी भी हंसने लगे। किसने कहा महाराज क्यों हंसते हो? कहा ये लड़की की आज अंतिम किस्त है रोने की और ये मिस्टर की आज अंतिम किस्त है हंसने की। कल से देख रहा ये हंसेगी और ये आज जो रो रहा है कल से हंसेगा और आज जो हंस रहा है कल से रोएगा, इसलिए हंस रहा है। तो कहानी है, या विचार कीजिए। ये थोड़ा समय आपको बता दूं क्योंकि हमारी नीति बड़ी प्रबल है और आप देख लीजिएगा इसका जानना बहुत ही जरूरी है। हमारे शिष्यों में भी भाइयों में भी कभी कभी कोई बात हो जाती है। मैं कहता ठीक है ये थोड़ा कमजोर है इसको हिंसा ज्यादा दे, आप समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए चलो मेरे दो बेटे हैं, अब एक की पैगार 40,000 है, एक की 15,000 है, कोई बात हुई तो मैंने कहा बेटा तेरी पैगार 40,000 है, तेरे को विश्वास में लेकर इसको थोड़ा ज्यादा दे दो, कर दे दो। और आप बताइए, आप कहोगे तो नाम के साथ बता दो, जो लोग मेरी बात माने वो बहुत सुखी रहे और जो लेफ्ट राइट करके छल कपट करके भाइयों के हिस्सा खाया है उनकी क्या हालत है वो अभी देखने वाला तो देख लेता है। ये दूसरे के हिस्सा खाना जहर है, जहर, और जहर को आप पचा नहीं सकते, थोड़े होता कोई ज्यादा। एक चीज बताइए, मैंने देखा है, मैं किसी के घर में गया, एक कमरे में दीवार पड़ी, अरे बैठने की तकलीफ, मैंने कहा क्या कहा भाई, कहता नहीं कमरे का अलग करना है। अब दोनों दुखी, ठीक है कोई बात नहीं, तो आप जरा इसके बात कीजिए, आप दोनों भाई समझ के नहीं जा सकते थे या दूसरा मकान बनाते, फिर मैं कैसे करता भाई मकान की पूरी कीमत क्या है, चलो ऐसे करो चलो। नहीं तो आपने भी देखा होगा कि जब बाप मकान बनाता है तो उसके मन में नहीं था कि कभी बीच में दीवार बनेगी, लेकिन बच्चे देखा कि नहीं, अब वो बाप जो स्वर्ग गया है होगा सुखी, या सोचो तो सही बाप की दी हुई चीज बाप बांटने वाले होते तो आप अलग कैसे कर, लेकिन देखो फिर उसमें परेशानी हो जाए। इसलिए आपसे कहता हूं, चाहे भाई की बात हो पड़ोसी की बात हो, अगर भगवान के नाम से आप त्याग करोगे तो त्याग का एक अर्थ बताता कि इतना गेहूं जमीन में दोगे मतलब त्यागोगे तो समय पर इतना मिलेगा, लेकिन पहले त्याग करना पड़ेगा, पहले जमीन से गेहूं न मांगे, पहले जमीन से गेहूं इतना दोगे तो इतना। इसलिए चाहे पड़ोसी भाई हो भगवान के नाम से दो, और आपको गारंटी देता हूँ जो गेहूं एक दिन में नहीं होता, थोड़ा समय लगता है, लेकिन त्याग का फल आपको थोड़ा समय लग जाएगा लेकिन उसका फल। लेकिन आजकल क्या है, इंस्टेंट काफी, इंस्टेंट चाय, इसलिए बस धर्म करते ही एकदम उसे तो रिवाल्वर लेके चलो तुरंत मिल जाएगा, हाईवे पे खड़े हो जाओ रिवाल्वर ले। एक बात करो विचार, इसलिए आप लोग मेरी बात मानो, भगवान पर विश्वास करो, अपने स्व पर विश्वास करो। चार वेद से साथ में बात लिखी है, दुख देने दुख होता है, सुख देने सुख हो, ये तो एक ईश्वरी न्याय है। इसलिए यहां पर आज बच्चे बैठे हैं, बड़ा संयोग है इंद्रवरण। मेरे प्यारे बच्चों, मैं नहीं पूछूंगा कि आप कहाँ से आए, आपका पिता, लेकिन कहता हूं परमात्मा ने आप सबको जबरदस्त दे दिया, आपको किसी से जाए विचार से बच्चों की बात बताऊं, थोड़ा बच्चों को देख के बोलता हूं, भगवान की कृपा से मैं भी पढ़ लिख कर आया हूं। जब मैं पढ़ता था बेटे, यहां भी जो होंगे मतलब पढ़े लिखे सभी, जब मैं पढ़ता था तो ट्यूशन करने वाले को गधा माना जाता था, और अभी तो जो नहीं करता वो उल्टा हो गया। एक बात कर, इसलिए मैं पढ़े लिखे बच्चों से भी कहता हूं, तुम किसके कविता पढ़ते हो, तुम किसका साहित्य पढ़ते हो, तुम किसकी बात करते हो, तो चाहे हिंदी की बात करो, इंग्लिश की बात करो, संस्कृत की बात, जिसकी भी बात करूं, बाणभट्ट की बात करूं, कालिदास की बात करूं, कबीर की बात करूं, सोहदास की बात करूं, आठा की बात करूं, शेक्सपियर की, मिल्टन की, लांग फोलो की, थॉमस एडिसन करूं कि न्यूटन के, आइंस्टाइन की, किसकी बात करूं, ये कोई ग्रेजुएट नहीं, लेकिन जबरदस्त अपने क्षेत्र में सफल हुए। और आप लोग इतने पढ़कर क्या उधार जिंदगी जी रहे, पढ़ाई बेकार नहीं है, पढ़ाई के खिलाफ में नहीं, लेकिन पढ़ करके जो ऊर्जा का रचनात्मक उपयोग होना चाहिए वो नहीं होगा, जो मिलाने की बात है वो तोड़ने की बात हो रही। हमारे पास जो शक्ति है हमें आपको उठाना, तो उसकी जगह में दबाने की बात कर रहा हूं। जो पोषक बनना चाहिए था वो दाग बनना है। भगवान ने हमें आपको कितनी शक्ति दी, किसकी बात होता है, मैंने कहा ना कि हमारे जीवन के अभिमान और स्वाभिमान की बात, आपको क्या कमी है, स्व आपके पास अपना क्या कमी है, ये किसकी बात होता है, या सोचो तो सही या विचार तो करो। किसने कहा मैं क्या बनू, कहते मेरे साथी यहां जा सोचो तो सही, अभी मित्र हैं, अभी शिष्य नहीं बनाया, जा समझने की बात। मित्र ने कहा तुम साथी बनो, साथी बना किधर चलूं क्या करूं, मित्र कहा चलो सर, फिर कहते हैं नहीं मुझे तो नहीं करना, अब मित्र का धर्म क्या है, तुम्हारी हताशा तुम्हारा दुख ये दूर करना मित्र का धर्म है। और जो मित्र आपकी कमजोरी को दुख को हर ले वही मित्र फिर गुरु हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ कई बार लोग मेरे पास आते हैं, स्वर जी आपको गुरु के रूप में विचार है, मैंने कहा पहले मेरे मित्र बनो फिर गुरु बनो, मित्र बन करके गुरु बनाओगे तो कभी नहीं छोड़ोगे, और सीधे गुरु बनूंगा तो तुम भी छोड़ दोगे मैं भी छोड़ दूंगा, तुम गुरु से घबरा जाओगे मैं चेले से घबरा जाओगे। अर्जुन को बहुत कुछ कहा गया, बताता हूँ तुझे हिजड़े कपड़ा पहनना पड़ा, क्या तो इसको गुरु गुरु बोलना है, कहा मैं मित्र के रूप में इनकी शक्ति को पहचान चुका हूँ। कितनी उत्तम बात है कि मित्र के रूप में पहचान चुका हूँ, अंदर बाहर मैं सब जानता हूँ क्या है, तुम कुछ भी कहो लेकिन मुझे शंका नहीं आएगी, इसलिए एक बड़ी ऊंची बात है, पहले मित्र बन के जब मैं गुरु बनूंगा तो आपको शंका नहीं होगी, और सीधे गुरु बनाओगे तो लोगों के भ्रम में आकर के शंका। ये अर्जुन कहता मैं जानता हूं तुम क्या मुझे कहते हो, रासलीला करता था, जो आक्षेप लगाया गया बहुत आक्षेप लगाया, ये तो माखन चोर है, ये तो ऐसा है, नाश्ता है, कुर्ता है, अर्जुन कहता मैं तो मित्र के रूप में सब देख चुका हूं, मित्र मित्र की बात जानता है, और फिर मैंने इनको गुरु बनाया, ये जो कपड़ा मेरा कर्म मुझे पहना रहा है, किस नहीं पहना, लेकिन यही बचाएगा। आप कहेंगे स्वामी जी आप क्या कहना चाहते हैं, किसी को देख करके किसी का सम्मान न करो, स्वयं अनुभव करो, आपके पिता पिता, आपकी माँ इसका चुनाव करके नहीं आए, आपको जन्म या विचार करो। हाँ गुरु बनाना तो अच्छी तरह रामकृष्ण भी कहा कि बाजार में खड़ा रहने जाते हो अच्छी तरह देख लो, पानी भर के देख लो, उल्टा करके देख लो, सीधा करके देख लो, लेकिन एक बार जब खरीद लिया जब अपना हो गया तो फिर वापस कर देंगे, फिर उसको उड़ा देना, अच्छी तरह टटोल समझ लो, माता पिता की परीक्षा में एक कर्म से गुजर, लेकिन उसको अच्छी तरह परीक्षा लेने के बाद जब गुरु बना लो तो फिर उसकी परीक्षा करना है ठीक, फिर कुछ नहीं मिलेगा। आपत्काल परखिए चाहिए, आपत्ति में पहचान होगी कि गुरु कौन है, मित्र कौन है, सगा कौन है, आपत्ति के समय पहचान होगी। और फिर मनोविज्ञान, कृष्ण जब जब आपत्ति पड़ी पुकारा, दौड़े राम भी दौड़े, कृष्ण भी। तो आपकी आपत्ति में जो आपकी मदद करे वही भगवान है, वही गुरु है, वही मित्र है, सुखे तो सभी साथी हैं। और फिर मनोविज्ञान आया, जो दुख में आपको नहीं छोड़ा है सुख में नहीं छोड़ा, जो केवल सुख का आपका साथी है वो दुख में छोड़ दो। मेरे प्यारे बच्चों, माता पिता ये दुख के साथी, बाकी सारी दुनिया सुख के साथी है। इसलिए माता पिता के प्रति जो भाव है वो कभी मन में कम नहीं होना चाहिए। मेरे पास बातें आती हैं, बच्चे बैठे हैं, मेरी बात सुन लीजिए, आप सब पढ़े लिखे हैं, बच्चे भी पढ़े लिखे हैं। जो बच्चे कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, संपर्क है, मेरे में विश्वास, तो अपने दिल की बात कर, और कम से कम 30 से लेकर 50% तक बातें ऐसी आई, स्वामी जी हमने वादा किया, वादा किया। मैंने कहा अपने माँ बाप से क्या वादा किया, आपके माँ बाप कॉलेज विश्वविद्यालय क्यों भेजे, क्या कह के भेजे थे, आज एक क्षणिक सुख के लिए तुम माँ बाप का विरोध कर रहे हो, और माँ बाप का जो पहला वादा था वो तुम भूल गए। तो कुछ लोग समझ जाते, कुछ नहीं समझते, जो समझ गए सुखी है, जो नहीं समझे बस जाने। आप लोग अपने वादे की बात करते हो, लेकिन माँ बाप से क्या वादा किया, दुख में कौन आपको पाला, आज आप एक बड़ी पोस्ट पर आ गए, हो गया तब जाके लोग आपकी तरफ से। मैं आप लोगों की बात बताऊंगा, आप लोगों आपके मन ये बैठे हम की बात नहीं, लेकिन दुनिया की बात होता। और बड़े प्यार से कहा, पैसे के चक्कर में, मान के प्रभाव में, या किसी न किसी तरह मैंने देखा है, स्वामी जी माँ बाप पास रह के क्या मिलेगा, मुझे जाना है, मुझे ये करना है। तो यहां पर एक टैगोर की बात प्यारे बच्चों बहुत याद आती, टैगोर के पास भी आकर के, रविन्द्रनाथ टैगोर, टैगोर के पास भी आकर के किसी ने माँ बाप की बात की, टैगोर ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें इतना लायक तो बना दिए, देखिए बड़ी दूसरे ढंग की बात है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें इतना लायक तो बना दिए कि माँ बाप के अस्तित्व को इनकार करने की तुम्हें ताकत तो आ गई। ये बड़ी समझ की बात है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें इतना लायक बना दिए कि माँ बाप के अस्तित्व को इनकार करने की ताकत आ गई, और जो मिथ्या संबंध है जगत के उसकी तरफ तुम आकर्षित हुए, और जो असली संबंध है तुम उसे भूल गए। अज्ञा समझने की बात है, समझने की बात। तो माता पिता एक याद, हिंदू संस्कृति में माता पिता को दुखी करने वाला कभी सुखी नहीं रहेगा, चाहे साधु बन जाए, शंकराचार्य बन जाए, कि करोड़पति बन जाए, कुछ भी हो जाए, मेरा सीधा कोई संबंध नहीं है। लेकिन हमारे कुछ शिष्य ऐसे हैं, यहां भी है और विदेश में, जिनका संबंध रतन टाटा से, मेरा कोई संबंध नहीं, जानकारी है थोड़ी। लेकिन रतन टाटा तो जो लोग नजदीक से देखे हैं, भले वो पारसी हैं, लेकिन हिंदू मत को बहुत जबरदस्त कहता, पूरी दुनिया में हिंदू संस्कृति जैसी कोई संस्कृति नहीं। अभी तो विदेश मामले में बहुत पुरानी बात हो। अब मैं पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता, लेकिन गुजरात के भी कुछ लोग मेरे परिचित हैं, लोग 15 मिनट कहते हैं, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंशियली मालूम होगा कि नैनो गाड़ी जो आई, कागज की लिखा पड़ी तो 7 दिन में हुई, लेकिन कहते आधे मिनट में सारी बात पकी हुई। आधे क्यों? वो लोग रतन को जानते, रतन टाटा को जानते, बीच में कोई बात। कैसा व्यक्तित्व, इंटरेस्टेड वाला, या सोचो तो सही, आपका कहना पड़ोसी नहीं मानता, क्योंकि आप जिंदगी उधार लोगों का विश्वास या समझने की बात, युधिष्ठिर की बात कर रहा, स्वाभिमान की बात कर रहा, अश्वत्थामा हाथो नरवा जिसने कहा मैं बोल सकता हूं, किसी से बुलवा सकता हूं, लेकिन युधिष्ठिर कितना स्वाभिमान है, अभिमान नहीं, इतना स्वाभिमान है कि दुनिया जानती है कि ये स्वप्न में भी झूठ नहीं बोलेगा, उससे बोलना। यही पर मनोवैज्ञानिक कहते हैं तुम अपने जीवन को इतना पारदर्शी बनाओ, मित्र तो क्या, मित्र दुश्मन भी तुम्हारा विश्वास करे तो दुनिया में तुम्हें नीचा दिखाने वाला कोई नहीं। मित्र तो मित्र क्या, दुश्मन भी विश्वास करे। ये जो बात हुई थोड़ी पॉलिटिकल है, नाम वगैरह लेना ठीक नहीं, लेकिन अंदर की जो छवि थी वो इतनी क्लियर थी कि आधे मिनट में सारी बात हो गई, बाकी 2 साल से लगे रहे कुछ नहीं, छवि ही नहीं थी। कभी अच्छे कभी, मैं पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपसे कहता हूं, बच्चे कई बार कहते महाराज जी पिताजी विश्वास नहीं करते। अरे पिता नहीं करे कौन नहीं करे, पिता विश्वास करता है लेकिन तू बिगड़े नहीं इसलिए तेरे को गड़बड़ी होती। माँ विश्वास करती, क्यों गले लगा के? हम कितनी गलतियां करते हैं लेकिन माँ बाप के गले लगाते, क्यों लगाते? कोई विश्वास तो है, आप श्वास हो, लेकिन छोटी छोटी बातों पर मैंने देखा है हम अपनी जिंदगी तो बिगाड़ते हैं, घर के परिवार के लिए। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने अभिमान जीवन का सत्यानाश करता है, स्वाभिमान व्यवहारिक का, मैं चलूंगा आपको चलने दूंगा, ये स्वाभिमान, मैं चलूंगा नहीं लेकिन दूसरे को चलने नहीं, मैं भी नहीं चलूंगा दूसरे को चलने नहीं दूंगा, यह अभिमान। मैं बढ़ूंगा दूसरों को भी बढ़ने दूंगा, यह स्वाभिमान। मैं खुद नहीं बढ़ूंगा दूसरे को बढ़ने नहीं दूंगा, अभिमान। दूसरे के सुख को देख करके प्रसन्न होना, आगे बढ़ाने की बात करना, ये स्वाभिमान। अब दूसरे को सुख दे करके कमी करना, सताना, परेशान करना, ये अभिमान। मैं दुखी हूं तो तू क्यों सुखी रहे, ये स्वाभिमान नहीं अभिमान है। तो सबसे पहले आप सबसे कहूंगा कभी कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम लायक बनो, भगवान सब कुछ देगा। चाहे अब्दुल कलाम की तरह जन्मे कि खान की तरह जन्मे, शेक्सपियर तरह के, मिल्टन तरह के, किसी की तरह, तुम्हारी योग्यता तुम्हें देगी, मांगने की जरूरत नहीं। और कभी अगर मांगना पड़ा तो माता पिता गुरु से मांगो, लेकिन याद रखो जब आवश्यकता होगी आप उसके लायक होगे तभी माता पिता गुरु देंगे। इसलिए बाइबल में सर्वन माउंट पर जो है क्रिश्चियन लोग पढ़िए, जीसस क्राइस्ट कहते हैं यू मे डिमांड, इफ द डिमांड इज नॉट फुलफिल्ड वेट इन टाइम। तुम मांगो और डिमांड नहीं मिलती तो थोड़ी प्रतीक्षा करो, मतलब उसमें लायक बनो, मिलेगी। उदाहरण के तौर पर मेरा 4 साल का बच्चा कहता है पिताजी 10,000 दो नहीं, इसलिए नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं, अभी उसकी जरूरत नहीं है। वही मेरा लड़का जब मेडिकल में जाएगा तो 50,000-50,00,000 दे सकता, आप उसके लायक तो सबसे पहले आप। अगर स्वाभिमान को जिंदा रखना है, रमन महर्षि की कहानी, हमारे साधु जिनका नहीं स्वाभिमान है, अभिमान आया सत्यानाश हो गया, रमन महर्षि स्वाभिमानी थे अभिमानी नहीं थे। जिस माँ के नाम से मैंने संन्यास लिया माँ खिलाएंगे, 12 वर्ष तक जो लोग अरुणाचलम गए होंगे उनके आश्रम को देखा होगा, पूरा इतिहास जान, और वो ये था कि माँ मांगूंगा तेरे से नहीं तो नहीं मांग, माँ के जबरदस्त पुजारी, यही आपके परमहंस का भी है। कपड़े बहुत गंदे हो गए, इतिहास उनका हो है भाई करके पढ़ी, उसमें इतिहास मैं कौन हूं उसका हिंदी गुजराती सब अनुवाद है। उनको समझने में बड़ी दिक्कत हो गई, लोग आप कौन है मैं कौन हूं या समझो तो। कपड़े मैले हो गए, उनके मन में विचार आया कि किसी भक्त को कह दो, ये विचार आते ही हमेशा वो सहज शांति में रहते, सहज भाव में रहते रमण महर्षि। अंदर से माँ ने दर्शन दिया, उन्हें प्रतिज्ञा की थी जो मांगूंगा माँ से मांगूंगा बाकी किसी से नहीं, ये तो क्या सोच रहा है। आंख खुली, फिर वो समाधि में गए और मां से पूछा, मां तेरे से मैं मांग रहा, मेरे कपड़े मैले हो गए, नए कपड़े चाहिए। मां ने कहा, कम से कम परिस्थिति में तुझे मैं जीना सिखाती हूं, अभी कपड़े मैले हैं, साबुन आ जाएगा, आधा साफ कर आधा पान, अभी इतनी कमी नहीं है कि तू नंगा रहेगा। किससे पूछा गया, ये पांडव आप में इतनी श्रद्धा रखते हैं, इसी हालत क्यों हुई? कहा, इनको सिखाना है कि गरीबी क्या है, कम से कम, और यही राजा बनेंगे तो राजा बनने के बाद एक कभी किसी का अपमान नहीं करेंगे, अपनी स्थिति का इनको ज्ञान होगा कि आदमी परेशानी में क्या से क्या है। अब देख लीजिए, मैं बताऊं, जो लोग इंस्पेक्टर से होते होते डीएसपी बने वो बहुत अच्छे हैं, और जो सीधे डीएसपी बन के आते हैं उनको कानून ही मालूम, बाकी कुछ भी कुछ नहीं मालूम, दूसरों धोखे कर बस कानून लगा। इसलिए इसको सिखाना है, बताना है। माँ कहती है, अभी कोई जरूरत नहीं मांगने की, नहीं मांगने। फिर कपड़े फट गए, रमन महर्षि जी का, फिर उन्होंने कहा केसेस नहीं माने। कहते मां कहीं से सुई डोरा ला दे, ये कपड़े फट गए हैं, ये सीना है। कहते अभी इतने फटे नहीं, गुजारा कर, जरूरत पड़ी फिर आ गया। आज रमन महर्षि की कहानी, कहे बेटा 12 साल पूरा हुआ, 12 साल पूरा होने पर महर्षि रमन नीचे जा रहे हैं, 7 साल की लड़की मिले, बाबा आप नीचे क्यों जा रहे हैं? कहा समाधि में माँ से बात करता रहा, लेकिन मैंने सोचा था कि 12 साल के बाद माँ प्रत्यक्ष माँ की तरह दर्शन देगी और मैं उसका दूध पीऊंगा बेटे की तरह। तो अंदर समाधि में सब दर्शन हुआ लेकिन प्रत्यक्ष नहीं हुआ, इसलिए जा रहा। उस 7 साल की लड़की देवी बने और कहा मुंह खोल और दूध आने लगा। कहा बेटा मैं पहले दिन से तुम्हारे साथ हूं, अब तुम 22 साल की प्रतिज्ञा किए थे समाधि में देखते ही रहे तो मैं क्या करूं। एक बार भगवान सदा आपके साथ है, इसलिए रमन महर्षि सृष्टि को वो किस तरह हमें आपको ट्रेनिंग देना चाहता है, किस तरह झिलाना चाहता है, सिखाना आप पे उसका दे। भगवान ने क्या किया, इतना सुंदर जीवन जो दिया किसने दिया? इस सुंदर जीवन को अच्छा बनाने के लिए उसको व्यवस्था पैदा करनी पड़ेगी। एक गुरु चेले की बात बता दो, गुरु जी मैं 11 बजे दूध पीता हूं, आज मैं जंगल में जा रहा हूं, ठीक है 11 बजे दूध मिल जाएगा? कहे बेटा मिल जाएगा, थोड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी। कहा 11 बजे जंगल में मिलेगा? कहा मिल जाएगा, व्यवस्था करनी पड़ेगी। चला गया जंगल में लकड़ी वगैरह काटने के लिए, आज सब लिए पुरानी कहानी है, प्यास लगी, जंगल में तालाब होता ही, तालाब में पानी पीने गया, पैर फिसला, गिरा, सिर में चोट लगी, और भी वहां थे, देखे सिर में चोट लगने से जंगल के बाहर एक परिवार था, उनको वैद्य हकीमी आती थी, कहते भाई खून निकल गया है, पहले इसको दूध पिलाओ। तो अंदर आवाज आई, कहते 11 बजे दूध मिला कि नहीं मिला? कहता गुरु जी मिला, इसलिए व्यवस्था करनी पड़ी, मिला। चेला कहता गुरु जी दूध तो मिला लेकिन व्यवस्था, आप व्यवस्था व्यवस्था बोलते थे, अभी समझ में आके स्वाभिमान, हम सब परमात्मा के संतान हैं, हमें चाहे हिजड़े कपड़ा पहना दे कि सिर पर चोट लगे कुछ लगे, लेकिन याद रखो निमित्त कोई बने, हकीम बने, डॉक्टर इंजीनियर बने, लेकिन याद रखना वो सब परमात्मा के स्वरूप हैं। लेकिन ये भी याद रखना कि जब व्यवस्था उसकी होती है तो अपने आप हो जाती है, मानने की भी कोई जरूरत नहीं। जहां मांगने गए बड़ा मुश्किल हो गया, वो तो कहता मैं सब कुछ तैयार किया, 4-5 शिष्यों को लेकर मैं किसी आश्रम में गया, बड़ी पुरानी बात, तो उन्होंने सुबह मुझे लिस्ट दी कि आप 3 दिन आ रहे, इतना दूध खर्च हुआ, इतनी दाल हुआ, ये हुआ। अब वो सब मैं बताना नहीं चाहता, जो मेरे साथ गए थे सबसे कहा था कि आप लोग इतना इनको दे देना, उनका हिसाब देखा तो वह 30 हुआ, मैंने कहा उनको हिसाब दे दो, बाद में उनको पता चला अरे भगवान से क्या हिसाब है, आपको जो जरूरत होगी वो देगा, और आप हिसाब मांगते हो मंदिर में जाकर, क्या मेरा काम हो गया तो 1.25 किलो लाडू चलाओ, भूखा है 1.25 किलो लाडू, फिर वो भी व्यापार करे एक बात का। इसलिए इंद्रभद्र ने जो अभिमान स्वाभिमान, इस शरीर बहुत सुंदर है, इस स्वाभिमान अभिमान, ये धन मेरे पास बहुत, स्वाभिमान ईश्वर कृपा उसको मत बोलो, लेकिन मेरा जैसा कोई विद्वान नहीं, मेरा जैसा कोई, मैं बनारस की बात बताऊं, एक चतुर्वेदी चार वेदों ज्ञाता मुझे मिले लेकिन भीख मांगते हुए, उनको भी अपनी पढ़ाई का बड़ा अभिमान आया था और भीख भी नहीं मिल रही। सुदामा को भी अपनी पढ़ाई का बड़ा अभिमान था, कहानी सुना दो, ये समझने की बात है। इसमें कोई अभिमान, आप जानते हैं, जा कहानी सुनिए। जंगल में से लकड़ी लाओ, आश्रम में सांदीपनी मुनि आश्रम मकरबन, उज्जैन के पास मकरबन है, सांदीपनी आश्रम आज भी है, जो लोग जाएंगे देखेंगे वहां है, जाते हैं, भैरव जी हैं, सब है, जो लोग गए होंगे सांदीपनी आश्रम सब है। जाओ आश्रम के लकड़ी लाओ, सुदामा और गए, माने का आए सुदामा, चना लेते जा, दोपहर का देर हो जाएगी, दोपहर में भूख लगे तो आधा तुम खा लेना, आधा किसको दे देना। सुदामा नहीं दिए, पेड़ पर चले गए, दांत बोलने लगा चना खाते समय, कैसे खाते हैं मित्र, दांत क्यों बोल रहे हैं, कहा कोई बात नहीं है, जहां ठंडी के कारण दांत आपस में लड़ रहे हैं, बाकी कोई बात नहीं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, झूठ बोल कपट के, एक कपट मित्र से कपट। गुरु जी आए, सांदीपनी मुनि आए, कहा गए देर हो गई, लास्ट में मिले, आप कहानी जानते हैं, इसका जो भाव है बता दो। सुदामा, मैंने गुरु माता से पूछा था, उन्होंने आधा चना तेरे को आधा किसको दिया, तेरी आदत मैं जानता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं तू कपट करके खा गए, गुरु तो आदत जानता है। हाँ गुरु जी खा गए। अरे तू अपने मित्र से चोरी किया, जा तुझे श्राप देता, कितना विद्वान हो जाएगा, धुरंधर हो जाएगा, लेकिन तुझे भीख में मुट्ठी भर अनाज भी मिलने वाला। सुदामा कहते हैं मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, आपकी बात में चूंके कर दू। कृष्ण रोने लगे, कहानी पढ़ी करुणा, कृष्ण रोने लगे, कहा क्यों रोता है, कहा कुछ है मेरा भाई, आपके आशीर्वाद से मैं महल में रहूंगा और मेरा भाई जो है भीख मांगे और ना मिले तो आप न अपना धर्म जान, लेकिन मैं भी आपका पुत्र हूं, मेरे भाई को मांगो। कहते तेरी करुणा देख करके दया आई, जिस दिन तेरे घर मांगने आ जाएगा मेरा श्राप दूर होगा। सुदामा कहता है ये ग्वाला, मैं ब्राह्मण, मैं कभी नहीं मांगने, इसके यहां मैं कभी मांगने नहीं जाऊं, ये छल किया कपट किया और गुरु के सामने नहीं तो वही आता तुरंत, कहते हे कृष्ण मैं तुमसे मांग रहा कुछ दे दो तो श्राप वहीं दूर। अब आप कहानी जानते कि गुरु का श्राप, श्रापित जो उनको बुलाए उसका ही सत्यानाश हो जाए, कौन बुलाएगा। फिर पत्नी ने कहा तुम्हें गुरु का श्राप लगा, लेकिन ये आशीर्वाद है कि जिस दिन मांगने किसके पास जाओगी श्राप दूर होगा, आप जाओ तो सही। अब कहानी यही खत्म होती है, आप जानते हैं कि मुट्ठी भर चना नहीं दिया, कपट किया और अभिमान किया, और कपट अभिमान छोड़ कर गए तो बिना बताए, बिना बताए किसने सब कुछ दे दिया। अरे कपट अभिमान छोड़ दीजिए, वो सब कुछ देगा, मांगने की भी जरूरत नहीं, मिल रहा तो कपट और अभिमान है। इसलिए आज पूरा विश्व कह रहा है कि सुदामा नहीं मांगे, एक कितनी ऊंची बात है। वही आप लायक बनोगे, आप में छल नहीं, कपट नहीं, अभिमान नहीं, तो कहीं से भी परमात्मा लगे। हम लोग जब अन्नपूर्णा सिद्ध किए तो यही हुआ, अन्नपूर्णा माने का माँ को माँ मानो, बेटे को बेटी मानो, नहीं तुम्हें कोई खिलाएगा मैं खिलाऊंगा, लेकिन चिंता नहीं, ये भगवा कपड़ा भगवान से बना है, एक बात बना। अब माँ कहती है हम तुम्हें खिलाएंगे, अब घबरा के भीख मांगने लगो तुम, लेकिन एक थोड़ी सी बात बता, माँ ने आशीर्वाद दिया नहीं तुझे कोई खिलाएगा तो मैं खिलाऊंगा, लेकिन नेह ऋषि ने जिसे नेपाल पड़ा, नेह ऋषि ने माँ की पूजा की, कहा माँ थोड़ी परीक्षा भी भक्तों की लेना नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। तब माँ ने थोड़ी सी व्यवस्था कर ली कि तुम कहीं भी रहोगे 3 दिन भूखा रखोगे, अगर 3 दिन में तुमने नहीं मांगा तो जिंदगी भर खिलाऊंगे, और 3 दिन में कभी भीख मांग लिया तो सारी जिंदगी भीख मांग कर ही खाना। एक बात बताओ ये हमारी जिंदगी में होगा, यहाँ भी आज कुल 3 दिन तक कोई पूछे नहीं, लेकिन हमें तो वही था। एक बात करता हूँ यही मैं आपसे कहता, आपका क्षेत्रपाल होता, आपकी कुल देवी होती है, ये सब हमारी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी परीक्षा लेंगे, नहीं तो राजा ने कह दिया कि हे मंत्री ऐलान कर दो जितने देवी भक्त हैं राज की तरफ से प्रबंध होगा, तो इतने लोग भक्त बन गए कि बस काम धंधा ही बन गया। मंत्री ने सोचा कि आपकी सरलता का बहुत लाभ लिया जाए, इसका मैं उपाय करता हूं, जहां हजारों लोग बैठे थे हरे रामा हरे कृष्णा जय दुर्गा माँ बोल रहे थे जय अम्बा माँ, मंत्री आगे कहता है देवी ने राजा को स्वप्न दिया है कि अकाल आने वाला है, लेकिन ये भक्त का सिर अगर चढ़ा दोगे तो अकाल दूर होगा, नर बलि देनी पड़ेगी, तो यहाँ हजारों भक्त हैं इस देश को प्रदेश को लोगों को बचाने के लिए, कल सुबह 1 माल पे आ जाना देवी के सामने बलि चढ़ा, एक भी नहीं आए। राजा को लेकर मंत्री आया, राजा कहते आप तो कहते हजारों भगत है, एक कहा रात में सुन के सब भाग गए, वो सब खाने वाले भगत, एक बैठा, कहते आप चलो आपकी बलि चढ़ाने का चढ़ा, अरे माँ अगर मेरी बलि चढ़ने से माँ खुश होती है प्रजा खुश होती है तो ये तो शरीर है एक दिन जाना है, माँ प्रकट हो गई बस यही भगत है, तो हे राजा भगत देख खिला करो नहीं तो काम धंधा बंद हो जाएगा, एक बात का मिलेगा आपको। तो आज इंद्रवदन ने जो विचार दिया बहुत सुंदर दिया, अभिमान और स्वाभिमान, हमारे अंदर स्वाभिमान होना चाहिए, स्वाभिमान का फिर से बता दो, भगवान तुम्हें देगा तुम लायक बनो, उधार मांगने कोशिश मत करो, छल कपट न करो, माँ बाप गुरु का नाम लेकर के किसी से पैसा मत मांगो, किसी से कुछ मत मांगो, और मेरा विश्वास रखो, शास्त्रों में 3 दिन लिखा है, लेकिन मेरा अनुभव कहता है मंत्र का जाप करते हुए जो आपके पास है केवल आप खूब श्रद्धा विश्वास से 3 हफ्ते 21 दिन तक करें और टोटल सरेंडर करें, तो यहाँ जो बैठे उनकी भी बात करता हूँ सब काम हो जाएगा, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक आदमी मकान बनाया, पैसा ज्यादा खर्च हो गया, मेरे पास आए, मैंने कहा तुम किसी से मत मांगो, तुम्हारी कुछ मत मुझसे पूछो, तुम्हारी जिसमें श्रद्धा है वो बताओ, कह स्वर्ण मेरी श्रद्धा तो आप में है, मैंने कहा बिल्कुल श्रद्धा मेरे में, मैं कहूँ कूद पड़ेगा पड़े कहाँ पढ़ू, मैं कहूँ जा रहे पिए कहाँ पीऊंगा, आँख बंद करके पीऊंगा मेरा किधर, मैंने कहा इतनी श्रद्धा है तो जा 21 दिन तक सुबह शाम मेरी फोटो के सामने आधे घंटे में जय गुरुदेव बोल और किसी से मत कर, अपने आप आए उसका 21वें दिन ये आप अंदाज लेना आते, लेकिन शंका कुशंका नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। 21वें दिन उसका एक मित्र इंग्लैंड से आया। ये जो इंग्लैंड से लोग आते हैं ना, 4-5 करोड़ रुपया लेकर यहाँ खरीदना होता है, उसको किसी काम से फिर जल्दी वापस जाना था। उसने कहा मित्र ऐसा है कि ये पैसा यहाँ छोड़ के जाऊँगा, अब बातें कुछ अंदर पॉलिटिक्स की हैं, ये पैसा बर्बाद हो जाएगा, आप ऐसा करो ये पैसा आप रखो, इसके ब्याज आप खर्च करना, क्योंकि इसे आपने प्राइवेट दे दो, बैंक में रख नहीं सकते, मैं दिखाना है वो सब आप समझ जाइए, लेकिन जब मैं आऊँ तो मुझे जमीन वगैरह खरीदनी है संघ प्रदेश नरोली और यहाँ तो ले, लेकिन इसका ब्याज आप खर्च कर देना। तो कहे भाई वो ब्याज कहाँ, 4 करोड़ ही काफ़ी है, मैं ब्याज नहीं लूँगा। कहा मैं मकान तो लगा, कहाँ लगा दो जितना लगा। तो देखिए इक्कीसवें दिन आकर के सारी समस्या हल हो गई। और अगर ये श्रद्धा को देखना है तो आप जिसे मानते हो, मनीषा नमला शंकर को, राम को, कृष्ण को, सुबह शाम आधे घंटे उसका नाम लो और रोज अपना काम करते रहो। एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, सब अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग जानते हैं, अनाथालय की, एक विश्वास की, एक श्रद्धा की, एक डिग्निटी, हमें उधार नहीं मांगना, मर जाएंगे लेकिन कुछ हो जाएंगे। पादरी के पास आकर बोला जा, कुक बोलता है 6 बजे आज बच्चों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अभी तो 4 बजे है, हाँ 4 बजे, फिर आके 5, हाँ 5 बजे, कहा 6:45 और 6 बजे घंटी बजती है, कहा घंटी बजा, अरे क्या बजाओ कुछ है ही नहीं, मैं कहता हूँ पादरी कहता है बजाओ बजाए, घंटी बजते ही बच्चे अपनी अपनी थाली लेके बैठ गए, अरे कहते सब थाली लेके बैठे, कहा भी 5 मिनट तो बाकी है, और 2 मिनट के पहले किसी के यहाँ बहुत भोज था, किसी का कैंसिल हुआ, सारा भोजन ठीक 6 बजे आ गया। ये अंग्रेजी का नहीं सुना होगा, अंग्रेजी का इंग्लिश में भी है, क्या क्या विश्वास। हमारी कहानी सीता की, लेकिन ये विश्वास होना चाहिए, विश्वास में जबरदस्त चमत्कार है, ये आपको मैं बता दू, बहुत जबरदस्त। आप लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, मैं से घर में पैदा हुआ पढ़ा लिखा, लेकिन वो बात छोड़िए, मैं गुजरात आज क्या लिखा है, एक लंगोटी लिखा है, लेकिन कोई कहते कभी किसी से मांगा सब कुछ हो गया, अभी लोग कहते ये ले लो ये ले लो, क्या ले लो, बिना मांगे सब कुछ मिलता है, तो आप लोग क्या बना। हम तो शाम को खाते हैं तो निश्चित होके खाते हैं सुबह मिलेगा, और आप 100 बरस का रखा है फिर भी हिसाब लगाते हो छठी पीढ़ी में क्या होगा, तो हम लोग हिसाब नहीं लगाते, जो आज दे रहा कल भी देगा। सीता की क्या बात, सीता नाम की राक्षसी आती थी और रावण के संकेत पे कहती थी, थोड़ी बात बता दे, हाँ जोड़ कर, 1 महीने में सीता मान जाएगी तो पटरानी बनेगी और नहीं तो नौकरानी बनेगी। रोज याद दिलाती थी सीता नाम की राक्षसी। अच्छा बताओ सीता क्यों कहते हैं, एक बार मैंने कहीं प्रवचन का दिया, जो हमारी बेटियां 3 रखती वो सीता है, सबसे छोड़ दिया। एक समय चला था 15 साल पहले, तो मैंने प्रवचन में बोल दिया 30 जटा 1 2 3, तो भाई तिरस्ता नहीं बनना, एक ही बहुत पार्वती वाला तिरस्ता रोज सारे में आज ये हुआ ये हुआ। अरे अभी एक दिन रह गया, तू अभी का संदेश भेज, तू सोने की पालकी आएगी पटरानी बन गया, अभी एक दिन तो है, शाम हुई, अरे अभी रात तो है, अब उसी रात में 12 बजे हनुमान जी आए और लंका जला गए। सीता कहती धन है तेरा विश्वास, सुबह होने से पहले लंका, तो यही आते हैं। मनीषानंद को मानो कि नमाज, किसी को तो मानते हो, बाप को मानते हो गए, माँ को मानते हो गए, पेड़ को मानते हो गए, एक मूर्ति बनाकर द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बना करके एक लव्य मानता था, खुद तो मानते होंगे, मैं कब कहता मुझे मानते, लेकिन कहीं ना किसी को मानते हो। और आजकल के जवान बच्चे भी अगर मान लो पत्नी को मानते हैं तो उसकी भी मूर्ति बना दो, चलेगा, ऐसा नहीं मैं कहता।